प्रारंभिक कथन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम मध्ययुगीन दर्शन की दुनिया में जा रहे हैं एक ऐसे विचारक पर फोकस करने के लिए जो थे तो बहुत प्रभावशाली पर शायद थॉमस एक्विनास जैसे बड़े नामों की छाया में कहीं रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉन डन्स स्कॉटस की।
हाँ, उनका समय मतलब 13वीं सदी का अंत और 14वीं सदी की शुरुआत। दर्शन और धर्मशास्त्र में काफी उथल पुथल का दौर था वो।
बिल्कुल, और स्कॉटस इस उथल पुथल के बीच एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण आवाज थे। उन्हें यूं ही नहीं उनके साथी विद्वानों ने डॉक्टर सुप्टिलिस कहा था।
सूक्ष्म डॉक्टर, हाँ सूक्ष्म डॉक्टर, ये नाम उनकी अविश्वसनीय लॉजिकल शार्पनेस और जो बारीक विश्लेषण वो करते थे उसके सम्मान में था। उन्होंने सिर्फ पुराने विचारों को दोहराया नहीं बल्कि थॉमस एक्विनास जैसे जो बड़े नाम थे ना उनकी मान्यताओं को भी चुनौती दी।
अच्छा।
हाँ, खासकर सत्ता की प्रकृति क्या है, व्यक्ति की अपनी अलग पहचान क्या है और इच्छा की स्वतंत्रता, इन जैसे मुद्दों पर।
और उनके विचारों का असर वो तो सदियों तक रहा और आज भी महसूस होता है।
तो चलिए आज की इस बातचीत में हम जॉन डन्स स्कॉटिस के जीवन को देखते हैं। उनके समय का वो बौद्धिक माहौल कैसा था, उनके वो क्या जबरदस्त दार्शनिक विचार थे और हाँ आज उन विचारों का क्या मतलब है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश रहेगी कि उनके जो जटिल लगने वाले आइडियाज हैं उन्हें थोड़ा सरल और दिलचस्प तरीके से पेश करें।
बिल्कुल, तो सबसे पहले वो दुनिया कैसी थी जिसमें स्कॉटिस सोच रहे थे, लिख रहे थे, जरा उसका नजारा देखते हैं। उनका जीवन काल आपने बताया रफली 1266 से 1308।
हाँ?
ये मध्ययुगीन यूरोप में स्कॉलास्टिसिज्म यानी जो पांडित्यवादी दर्शन था उसका पीक टाइम था।
हाँ, बिल्कुल पीक टाइम था। और ऑक्सफर्ड, पेरिस जैसी जो यूनिवर्सिटीज थी
हाँ।
वो ज्ञान और जोरदार बौद्धिक बहसों के मतलब सेंटर बन चुके थे।
सोचिए क्या माहौल रहा होगा।
सही में।
हाँ, बौद्धिक रूप से देखें तो एक बहुत ही रोमांचक दौर था वो।
उस युग का जो सेंट्रल आइडिया था वो ये था कि ईसाई धर्म की जो सच्चाइयां हैं और अरस्तु का दर्शन जो फिर से खोजा गया था उनके बीच कैसे तालमेल बिठाया जाए। सेंट थॉमस एक्विनास तो अपना वो बड़ा काम कर ही चुके थे।
हाँ, उनका थॉमिज्म।
हाँ, थॉमिज्म, वो एक फ्रेमवर्क तो सेट कर चुके थे। स्कॉटस ने इसी माहौल में कदम रखा और वो फ्रांसिस्कन संप्रदाय से थे।
अच्छा।
हाँ, और फ्रांसिस्कन पारंपरिक रूप से सेंट ऑगस्टीन के विचारों के ज्यादा करीब माने जाते थे, खासकर इच्छा और ईश्वरीय प्रेम पर उनका जोर था, जबकि डोमिनिकन्स जो थे वो ज्यादातर एक्विनास को फॉलो करते थे।
तो क्या स्कॉटिस ने बस अपने फ्रांसिस्कन विचारों का ही साथ दिया या कुछ अलग किया?
यही तो स्कॉटिस की खासियत है, वो किसी एक खेमे में बंधे नहीं। उन्होंने अरस्तु, एक्विनास, ऑगस्टीन, यहाँ तक कि इब्न सीना यानी एविसेना जैसे इस्लामी दार्शनिकों के विचारों को भी गहराई से पढ़ा, उनका विश्लेषण किया।
अच्छा।
हाँ, आलोचनात्मक ढंग से उन्होंने इन सब से सीखा पर किसी की नकल नहीं की, बल्कि अपना एक ओरिजिनल और बहुत ही सूक्ष्म सटल दर्शन तैयार किया। ये वो दौर भी था जब आस्था और तर्क का रिश्ता क्या है इस पर तीखी बहसें चलती थीं।
हाँ,
और स्कॉटस इन बहसों के बिल्कुल सेंटर में थे, हमेशा जो स्थापित मान्यताएं थीं उन पर सवाल उठाते हुए।
चलिए अब जरा उनके निजी जीवन को देखते हैं। जन्म हुआ स्कॉटलैंड के डन्स नाम के एक छोटे से कस्बे में लगभग 1266 के आसपास। उस जमाने के हिसाब से उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, है ना?
नहीं, ज्यादा पता नहीं है, बस इतना मालूम है कि वो कम उम्र में ही फ्रांसिस्कन बन गए थे और 1291 में उन्हें पादरी बनाया गया। और ऐसा माना जाता है कि उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हुई।
ऑक्सफोर्ड।
हाँ, और ऑक्सफोर्ड की जो बौद्धिक कठोरता थी उसी ने उनकी सोच को वो लॉजिकल धार दी, वो तत्व मीमांसीय गहराई दी जो उनके काम की पहचान बनी। वो धर्मशास्त्र में मास्टर बने, पहले ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया, फिर पेरिस यूनिवर्सिटी गए जो उस वक्त यूरोप का इंटेलेक्चुअल हब था। और उनके लेक्चर इतने कॉम्प्लेक्स, इतने सटीक और इतने बारीक विश्लेषण वाले होते थे कि छात्र और बाकी विद्वान उन्हें इज्जत से डॉक्टर सुप्टिलिस यानी सूक्ष्म डॉक्टर कहने लगे।
तो ये तारीफ थी, मजाक नहीं?
नहीं नहीं, बिल्कुल तारीफ थी, उनकी असाधारण बुद्धि का सम्मान था ये।
लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं थी, कुछ टकराव भी हुए थे। आपने बताया था कि उन्हें पेरिस छोड़ना पड़ा था।
हाँ बिल्कुल, 1303 में एक बड़ा मामला हुआ। फ्रांस के राजा थे फिलिप चतुर्थ, उन्होंने चर्च के पादरियों पर टैक्स लगाने की कोशिश की।
अच्छा।
और पोप बोनिफिस अष्टम ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इस झगड़े में स्कॉटिस ने राजा का नहीं पोप का साथ दिया। ये दिखाता है कि वो चर्च की आज़ादी को लेकर कितने दृढ़ थे, लेकिन हाँ, इसकी कीमत उन्हें पेरिस से निष्कासन के तौर पे चुकानी पड़ी।
लेकिन वो वापस भी तो आए थे पेरिस, और वहाँ कोई बड़ी बहस जीती थी।
हाँ, निष्कासन लंबा नहीं चला। वो पेरिस लौटे और 1305 में उन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही मशहूर पब्लिक डिबेट, जिसे डिस्प्यूटेशन कहते थे, उसमें हिस्सा लिया। मुद्दा था वर्जिन मैरी की निष्कलंक अवधारणा, यानी इमैक्युलेट कंसेप्शन का सिद्धांत। मतलब ये कि मैरी जन्म से ही पाप मुक्त थीं।
ये उस वक्त कंट्रोवर्शियल था।
हाँ, उस वक्त ये काफी विवादित विचार था, लेकिन स्कॉटिस ने इस सिद्धांत का इतने जबरदस्त तरीके से बचाव किया। कहते हैं कि उन्होंने अकेले ही इसके खिलाफ दिए गए 200 से ज्यादा तर्कों को काट दिया।
200?
हाँ, ये बहस तो मतलब मध्ययुगीन अकेडमिक दुनिया की एक किंवदंती बन गई, और उनकी इस जीत ने सिद्धांत को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सदियों बाद यही कैथोलिक चर्च का ऑफिशियल सिद्धांत बना।
कमाल है, 200 तर्क, ये तो दिमागी कसरत की हद है। लेकिन उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, है ना?
हाँ, ये दुख की बात है। उनका पूरा जीवन फ्रांसिस्कन संप्रदाय और ऑक्सफोर्ड व पेरिस के अध्ययन केंद्रों से ही जुड़ा रहा। 1307 में उन्हें जर्मनी के कोलोन शहर भेजा गया एक नया फ्रांसिस्कन स्टडी सेंटर शुरू करने के लिए। लेकिन वहां पहुंचने के बस एक साल के अंदर ही 1308 में सिर्फ 42 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत हो गई।
ओहो, बहुत जल्दी।
हाँ, और इस वजह से उनके कई बड़े काम अधूरे रह गए। बाद में उनके शिष्यों ने उन्हें संभाला, एडिट किया। एक कहानी ये भी है, हालांकि शायद सच ना हो, कि उन्हें कोमा में जाने पर गलती से जिंदा दफना दिया गया था, लेकिन ये शायद उनकी अचानक मौत के रहस्य को दिखाने वाली बात ही है।
इतनी कम उम्र में इतना काम, ये तो कमाल की बात है। चलिए अब उनके उन बड़े विचारों पर आते हैं जिन्होंने फिलॉसफी में हलचल मचा दी। आपने एक्विनास से उनके मतभेद का जिक्र किया था, सत्ता या होने, बींग के बारे में उनका क्या अलग सोचना था?
हाँ, ये उनके सबसे मौलिक योगदानों में से एक है। देखिए, एक्विनास मानते थे कि जब हम कहते हैं ईश्वर है और ये पत्थर है, तो ये जो है शब्द है ना,
हाँ,
इसे हम सिर्फ सदृश्य एनालॉजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब ईश्वर की सत्ता और किसी प्राणी की सत्ता, ये फंडामेंटली अलग है। स्कॉटिस ने कहा नहीं, उन्होंने सत्ता की एक रूपता, यूनिवर्सिटी ऑफ बीइंग का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता या बीइंग का जो मूल मतलब है, वो हमेशा एक ही रहता है, चाहे हम ईश्वर की बात करें या किसी पत्थर की।
एक मिनट, इसका मतलब क्या ये हुआ कि ईश्वर और पत्थर एक ही लेवल पर आ गए? मैं सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है?
अच्छा सवाल है। नहीं, स्कॉटिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो बराबर है। उन्होंने साफ किया कि सत्ता का अर्थ यानी कॉन्सेप्ट तो एक है, लेकिन उसका प्रकार या मोड अलग है। ईश्वर अनंत सत्ता है, इन्फिनिट बीइंग, और प्राणी जो है वो सीमित सत्ता है, फाइनाइट बीइंग। लेकिन जो सत्ता शब्द है, वो अपने आप में एक ही आइडिया बता रहा है।
अच्छा,
अब इसका बड़ा फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ईश्वर और सृष्टि के बीच एक मजबूत दार्शनिक पुल बन गया। ईश्वर के अस्तित्व और उसके गुणों के बारे में तर्क करना, मतलब लॉजिकली बात करना, पहले से ज्यादा सीधा और संभव हो गया। ये विचार हमें उनके सबसे बड़े ग्रंथ ऑर्डिनेशियो में मिलता है।
हाँ, जिसे ओपुस ऑक्सियनजियन शिए भी कहते हैं।
बिल्कुल,
जो असल में पीटर लोम्बार्ड की मशहूर किताब सेंटेंसेस पर उनकी कमेंट्री है।
हाँ।
और अरस्तु की मेटाफिजिक्स पर जो उनकी टीका है।
हाँ।
उसमें भी ये प्रमुखता से है।
समझ गई। तो ये ईश्वर के बारे में फिलोसॉफिकली सोचने का एक नया रास्ता खोलने जैसा था। अब वो जो अनोखा शब्द था हेचितास,
हाँ,
उसका क्या मतलब है और वो क्यों जरूरी था?
हेचितास, हाँ, लैटिन में इसका मतलब है येपन या दिसनेस। सवाल ये था कि एक ही तरह की दो चीजें, मान लीजिए दो इंसान या दो घोड़े, वो आखिर एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? उनमें सिर्फ कॉमन इंसानियत या घोड़ापन तो नहीं है?
हाँ, सही बात है। एक्विनास ने इसका जवाब दिया था कि ये मैटर यानी पदार्थ की वजह से होता है, लेकिन स्कॉटिस ने कहा नहीं, हर व्यक्ति या हर चीज में एक अंदरूनी पॉजिटिव यूनिक क्वालिटी होती है जो उसे वही बनाती है जो वो है। यही येपन है जो सुकरात को सिर्फ एक और इंसान नहीं, बल्कि वो खास सुकरात बनाता है।
ओह, जैसे एक तत्व मीमांसीय फिंगरप्रिंट।
हाँ बिल्कुल, क्या बढ़िया कहा आपने, तत्व मीमांसीय फिंगरप्रिंट। ये विचार जो फिर से ऑर्डिनाटियों में मिलता है, ये व्यक्ति की विशिष्टता, उसकी यूनिकनेस को जबरदस्त महत्व देता है, और मध्ययुग के लिए ये सोच बहुत क्रांतिकारी थी।
कमाल है, ये व्यक्ति को समूह से ऊपर रखता है ना? और आपने इच्छा की प्रधानता की भी बात की थी, उसका क्या मतलब हुआ?
हाँ, ये स्कॉटिस के दर्शन का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, इच्छा की प्रधानता, वॉलंटियरिज्म। देखिए, एक्विनास और अरस्तु की जो परंपरा थी, उसमें बुद्धि, इंटेलेक्ट को ज्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था। बुद्धि ही इच्छा को बताती थी कि क्या अच्छा है, और इच्छा उधर जाती थी। स्कॉटिस ने इसे पलट दिया, उन्होंने कहा कि ईश्वर और इंसान दोनों में इच्छा बुद्धि से ज्यादा प्राथमिक है। इच्छा एक आजाद, सेल्फ डिटर्मिनिंग पावर है।
अच्छा, मतलब इच्छा खुद तय करती है।
हाँ, ईश्वर दुनिया इसलिए नहीं बनाता कि उसकी बुद्धि उसे ऐसा करने को कहती है, बल्कि इसलिए कि उसकी आजाद इच्छा ऐसा चाहती है। नैतिक नियम भी ईश्वर की आजाद इच्छा पर आधारित है, और इंसानों के लिए भी प्रेम, जो कि इच्छा का काम है, वो ज्ञान, जो बुद्धि का काम है, उससे ऊंचा है। ये विचार उनके पूरे धर्मशास्त्र में फैला हुआ है, ऑर्डिनाटियों में, उनके पेरिस लेक्चर्स के नोट्स में।
हाँ, वो रिपुटाशियोनेस पेरिसेंसियस।
बिल्कुल, और उनका वो छोटा ग्रंथ है दे प्रोमो प्रिंसिपियो, जिसमें वो ईश्वर के अस्तित्व के लिए सिर्फ फिलॉसफी के तर्क देते हैं, उसमें भी इच्छा की आजादी की गूंज है।
और वो औपचारिक भेद वाली बात, क्या वो सच में जरूरत से ज्यादा बारीकी नहीं थी, जैसा कि बाद में लोगों ने कहा?
हाँ, बात के आलोचकों ने तो मजाक उड़ाया, पर स्कॉटिस के लिए ये एक जरूरी लॉजिकल टूल था। ये जो औपचारिक भेद है, ये दो अलग अलग चीजों के बीच जो वास्तविक भेद होता है, उससे तो कमजोर है। लेकिन जो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, मानसिक भेद, उससे ज्यादा मजबूत है। ये एक ही चीज के अंदर मौजूद दो ऐसे पहलुओं के बीच होता है जो असल में अलग तो हैं, पर उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता।
जैसे
कोई उदाहरण, जैसे ईश्वर की अच्छाई और ईश्वर की बुद्धिमत्ता, ये ईश्वर में एक साथ है, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, पर वो एक ही चीज नहीं है, उनमें औपचारिक भेद है। या जैसे हमारी आत्मा की क्षमताएं, सोचने की शक्ति और चाहने की शक्ति, ये भेद स्कॉटस को कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बिना सिंप्लीफाई किए या बिना विरोधाभासी हुए कहने की सुविधा देता था, और इसी तरह की सूक्ष्मता की वजह से उनके साथी विद्वानों ने उन्हें सम्मान से सूक्ष्म डॉक्टर कहा था, आलोचना में नहीं।
अच्छा, तो इन सब विचारों ने मिलकर स्कॉटस को एक्विनास का जो दबदबा था दर्शन में, उसके सामने एक बहुत ताकतवर विकल्प बना दिया।
बिल्कुल, स्कॉटस के विचार इतने प्रभावशाली थे कि उनके फॉलोअर्स का अपना एक पूरा स्कूल बन गया, स्कॉटिज्म, और ये सदियों तक कैथोलिक फिलॉसफी के अंदर थॉमिज्म का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बना रहा, खासकर फ्रांसिस्कन संप्रदाय में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्कॉटिज्म मध्ययुगीन और शुरुआती आधुनिक दौर की एक बड़ी बौद्धिक धारा थी।
फिर जैसा आपने बताया, कहानी बदल गई, पुनर्जागरण काल आया और उनकी इज्जत को धक्का लगा, और वो डंस वाली बात सामने आई।
हाँ, ये इतिहास का एक बड़ा मजाक है कह सकते हैं। पुनर्जागरण के जो मानवतावादी विद्वान थे, उन्हें स्कॉटिस के बाद के जो अनुयायी थे, जिन्हें डंस मैन कहा जाता था,
हाँ,
वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बेकार की शब्दावली इस्तेमाल करने वाले लगते थे। उन्हें लगा कि ये लोग पुरानी फालतू की बारीकियों में फंसे हुए हैं, और जो नया ज्ञान आ रहा है, जैसे क्लासिकल लिटरेचर वगैरह, उसका विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए किसी भी जिद्दी, मंदबुद्धि या नए विचार सीखने में नाकामयाब इंसान के लिए डंस शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
ओह, उनके नाम से?
हाँ, सीधे स्कॉटिस के नाम, डंस से। इस तरह एक महान विचारक का नाम मूर्खता का पर्यायवाची बन गया, और इसने सदियों तक उनकी विरासत को काफी नुकसान पहुंचाया।
ये तो बहुत अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन क्या अब उन्हें उनका सही मकाम वापस मिल रहा है?
निश्चित रूप से, 20वीं सदी में और खासकर पिछले कुछ दशकों में स्कॉटिस के काम में फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस की दिलचस्पी फिर से जागी है। मार्टिन हाइडेगर, गाइल्स डेल्यूज जैसे बड़े विचारकों ने उनके सत्ता, व्यक्तिवाद, हेक्षितास और आकस्मिकता, कंटिंजेंसी, मतलब चीजों का जरूरी ना होकर वैकल्पिक होना, इन विचारों में बहुत गहराई पाई है।
अच्छा,
हाँ, अब उन्हें मध्ययुगीन काल के सबसे मौलिक और जरूरी दार्शनिकों में गिना जाता है, एक्विनास के बराबर का दर्जा दिया जाता है कह सकते हैं।
और उनकी आज की प्रासंगिकता सिर्फ अकेडमिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है, है ना?
इच्छा और स्वतंत्रता पर उनका जो जोर था उसे कुछ विचारक मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म और व्यक्तिगत आज़ादी के सिद्धांतों का एक तरह से अग्रदूत मानते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, मेरी की निष्कलंक अवधारणा पर उनके तर्कों ने कैथोलिक चर्च के सिद्धांत को सीधे सीधे प्रभावित किया। इतना ही नहीं, उनके गहरे धर्मशास्त्रीय योगदान और पवित्र जीवन को देखते हुए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1993 में उन्हें धन्य बियटिफाइड घोषित किया, जो संत बनाए जाने की प्रक्रिया में एक अहम पड़ाव है।
क्या हम उनके विचारों का निचोड़ कुछ मुख्य पंक्तियों या संदेशों में समझ सकते हैं?
सीधे उनके कोर्स देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स लैटिन में है, पर दो सेंट्रल मैसेज बिल्कुल साफ है। पहला, जैसा उनके ऑर्डिनेशियो की प्रस्तावना में झलकता है, धर्मशास्त्र का असली मकसद सिर्फ जानना नहीं बल्कि प्यार करना है। मतलब बौद्धिक समझ अपनी जगह है, पर उससे ज्यादा जरूरी है ईश्वर से प्रेम करना और उसके जरिए मुक्ति पाना। ये उनके इच्छा को प्राथमिकता देने वाले दर्शन का निचोड़ है। और दूसरा, इच्छा की स्वतंत्रता के बारे में उनका मानना। इच्छा अपने कर्म की स्वयं स्वामिनी है।
अच्छा।
यानी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो तो एक तय तरीके से काम करने को मजबूर है, पर इच्छा आजाद है, वो खुद चुनाव करती है।
जाहिर है, इतने नए और चुनौतीपूर्ण विचारों की आलोचना भी हुई होगी। बहुत ज्यादा बारीकी के आरोप के अलावा क्या उनके इच्छावाद पर भी गंभीर सवाल उठे थे?
हाँ, उनका इच्छावाद यानी वॉलंटियरिज्म हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। मुख्य चिंता ये थी कि अगर नैतिकता पूरी तरह से ईश्वर की आज़ाद इच्छा पर निर्भर है, तो क्या ईश्वर मनमाने ढंग से कुछ भी हुक्म दे सकता है? क्या वो बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई कह सकता है? इसे डिवाइन कमांड थ्योरी की प्रॉब्लम कहते हैं।
स्कॉटिस ने इस चिंता का क्या जवाब दिया?
स्कॉटिस ने तर्क दिया कि ईश्वर की इच्छा मनमानी या आर्बिट्ररी नहीं है। वो ईश्वर की अपनी जो आंतरिक लॉजिकल कंसिस्टेंसी है और जो उसकी अच्छाई है उससे बंधी हुई है। ईश्वर खुद से विरोधाभासी आदेश नहीं दे सकता, जैसे ईश्वर ये हुक्म नहीं दे सकता कि उससे नफरत की जाए।
ओके।
लेकिन फिर भी ये बहस की नैतिकता का आधार ईश्वर की इच्छा है या उसकी बुद्धि, जैसा एक्विनास मानते थे, ये स्कॉटिज्म और थॉमिज्म के बीच सदियों तक चलती रही। थॉमिस्टो ने उनकी सत्ता की एकरूपता की भी आलोचना की, कहा कि ये ईश्वर और प्राणी के बीच की दूरी को कम करके ईश्वर की जो परम उत्कृष्टता है, जो ट्रांसेंडेंस है, उसे खतरे में डालता है।
ये सब सुनने के बाद जॉन डन स्कॉटिस वाकई एक बेहद जटिल और गहरे विचारक लगते हैं, जिन्होंने मध्ययुगीन सोच को सचमुच झकझोर दिया था।
बिल्कुल, स्कॉटिस हमें लगातार ये याद दिलाते हैं कि हमें जो स्थापित धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाना चाहिए, और हर चीज की, खासकर हर इंसान की जो यूनिक वैल्यू है और जो स्वतंत्रता है, उसे पहचानना चाहिए। उनका वो यहपन यानी यहपन का आइडिया कि हर चीज में, हर व्यक्ति में कुछ ऐसा है जो उसे बिल्कुल अनोखा बनाता है, बिल्कुल गैर दोहराने योग्य। वो आज की दुनिया में जहां स्टैंडर्डाइजेशन और एक रूपता का दबाव इतना बढ़ रहा है, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस यहपन को देख पाते हैं या अक्सर अनदेखा कर देते हैं।
शायद यही सवाल स्कॉटिस हमारे लिए छोड़ रहे हैं। क्या हम खुद अपनी और दूसरों की उस अनूठी पहचान, उस विशिष्ट फिंगरप्रिंट को ज्यादा गहराई से सराहने और उसका सम्मान करने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे सुनने वाले जरूर सोच सकते हैं।
अंतिम कथन।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।